समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं नेहा गोस्वामी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो नेहा, हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट नेहा। And listeners, for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes and much more. We begin with the news headlines first.
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति के साथ वार्ता की। पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों के लिए चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाए रखने का आह्वान।
Undocking of XM-4 carrying group captain Shubhanshu Shukla and 3 other crew members to begin at 4:30 PM today.
अमेरिका रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन की मदद के लिए पैट्रियट वायु रक्षा हथियार भेजेगा।
IMD issues heavy to very heavy rainfall warning in parts of Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and West Bengal today.
Lords में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें दिन का खेल जारी है।
And now it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about countdown to return of Axiom Mission 4 begins and Chandrayaan 3 launch anniversary. Well, the countdown to return home for Axiom Mission 4 crew, including pilot Shubhanshu Shukla, has begun. Once the SpaceX Dragon capsule undocks from the International Space Station a short while from now, it will take more than 22 hours for the space capsule to return to Earth with a splashdown at California coast around 3 p.m. Indian Standard Time tomorrow.
Exim 4 mission par gaye Bharatiya Antariksh Yatri group captain Shubhanshu Shukla aur teen anya sadasya dharti par lautne ke liye tayar hain. Char chalak ke dal ke sadasya Bharat ke Shubhanshu Shukla, Poland ke Slavoj उज्नांस्की, विस्नियुस्की और हंगरी के टिबोर कापुआरे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में 2 हफ्ते समय बिताने के बाद वे अपने साथ नासा के हार्डवेयर सहित 580 पाउंड से ज्यादा कार्गो और मिशन के दौरान किए गए 60 से ज्यादा प्रयोगों के आंकड़े लेकर आ रहे हैं।
In a heartfelt farewell ceremony on Sunday evening, the astronauts exchanged words of gratitude. Group Captain Shukla became the first Indian to visit the International Space Station and the second Indian astronaut after Wing Commander Rakesh Sharma, who went to space in 1984. And during the journey, Group Captain Shukla conducted 7 India-specific experiments. And in his farewell speech aboard ISS, Group Captain Shukla described his space journey as incredible.
एक बार अनडॉक होने के बाद ड्रैगन को पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने और कैलिफोर्निया तट पर उतरने में लगभग 22.5 घंटे लगेंगे। प्रस्थान पूर्व सभी जांच पूरी होने के बाद स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल अब से कुछ ही देर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के हार्मनी मॉड्यूल से अनडॉक हो जाएगा। हालांकि ये सभी ऑपरेशन स्वचालित हैं, लेकिन अनडॉकिंग की अंतिम अनुमति पुनः प्रवेश के लिए अनुकूल मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगी।
Yes, and the SpaceX Dragon spends nearly a day in orbit as it carries out a series of maneuvers to lower its orbit from the 400 kilometers where the International Space Station orbits the Earth, and it follows a carefully planned sequence including orbital alignment, deorbit burn and orbit lowering before it finally readies for re-entry into the Earth's atmosphere to ensure maximum safety, parachute deployment and precise splashdown. These maneuvers are planned at a precise altitude, aligning with the spacecraft's return trajectory.
पुनः प्रवेश का अंतिम चरण ग्राउंड स्टेशनों से हरी झंडी मिलने और रिकवरी टीमों के स्टैंड बाई पर होने के बाद शुरू होता है। उसके कुछ ही मिनटों बाद तैनात नाव अंतरिक्ष यात्रियों को निकालने और उन्हें बेस पर लाने के लिए रवाना हो जाएंगी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने के लिए चालक दल के लगभग 10 दिन क्वारंटाइन में रहने की संभावना है। 4 सदस्यीय मिशन का नेतृत्व नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विटसन ने किया, जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पायलट थे और दो मिशन विशेषज्ञ पोलैंड के स्लावोस उज्नांस्की और हंगरी के टिबोर कापू थे। यह मिशन इसरो के साथ एक निजी अंतरिक्ष उड़ान सहयोग था जिसमें 550 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था।
The last time India, Poland or Hungary sent people to space a long time back when the current crop of astronauts had not yet been born and back then they were called cosmonauts. But this mission especially for India is no longer one-off. India Space Agency ISRO sees the XM4 mission as a key stepping stone towards its own maiden crewed mission planned for 2027 under the Gaganyaan program, meaning Skycraft. India also plans to set up its own space station over the next decade.
भारत के विज्ञान और दृढ़ संकल्प की ऐतिहासिक उपलब्धि चंद्रयान 3 ने आज अपने प्रक्षेपण के 2 वर्ष पूरे कर लिए। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लैंडर और रोवर को स्थापित करना तथा संपूर्ण लैंडिंग और रोविंग क्षमताओं का प्रदर्शन करना था। वर्ष 2023 में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित LVM3M4 रॉकेट ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया था। एक रिपोर्ट।
Chandrayaan-3 consists of an indigenous propulsion module, a lander module and a rover to develop and demonstrate new technologies required for interplanetary missions. On 23rd August 2023, Chandrayaan-3 successfully soft-landed on the moon's south pole. With this landing, India became the fourth nation to successfully land on the moon and the first to achieve a soft landing near the lunar south pole. During the mission, several experiments including measurement of near-surface plasma content, presence of minerals, elements, temperature profile of the lunar topsoil were conducted. Prime Minister Narendra Modi named the site where Vikram lander and Pragyan rover landed on the lunar surface as Shiv Shakti. Pallavi Parmar, Akashwani News, Delhi.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। सावन के पहले सोमवार पर उत्तराखंड शिव भक्ति में डूबा हुआ है। तड़के से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और बोलबम के जयकारों के साथ वातावरण भक्तिमय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश के मुख्य शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं।
On the first Monday of the month of Shravan, an influx of devotees is being seen at Shiva temples across Uttarakhand. From the early hours of the morning, devotees have been assembling at temples for Jalabhishek. As the day progresses, the crowd continues to grow. Long queues of devotees are being witnessed at prominent Shiva temples in Haridwar, Rishikesh, Kashipur, Dehradun and other regions. Meanwhile, a large number of Kavariyas are continuing to arrive in Haridwar for the Kavar Yatra. Carrying Ganga water, they are heading towards Shiva temples with chants of Bol Bam. Cities like Haridwar, Rishikesh and other towns along the routes are filled with the spirit of Shiva devotion. Elaborate security arrangements have been made across the route. Huge crowds of devotees are also gathering at major Shiva shrines like the Kashi Vishwanath Temple in Uttarkashi, Tungnath Temple in Rudraprayag, Jageshwar Dham in Almora, Dudatoli Shiva Temple in Pauri and Neelkanth Mahadev. Special rituals and worship ceremonies have also been organized in these temples. The administration and police have ensured special security arrangements around the temples, including traffic management, deployment of medical teams and arrangements for drinking water. On this sacred first Monday of the month of Shravan, the entire Uttarakhand appears to be absorbed in Shiva devotion. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
Goa is now moving rapidly towards becoming self-sufficient in the field of agricultural production, nutrition, flowers, fruits, vegetables and milk. We have a report.
गोवा अब कृषि उत्पादन, पोषण, फूल फल, सब्जियां और दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा की गई पहल के कारण गोवा में संबंधित वस्तुओं का अन्य राज्यों से आयात 25% तक घट गया है। इतना ही नहीं, गोवा में उगाई जा रही 10% सब्जियां अब अन्य राज्यों को निर्यात भी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने पणजी में आयोजित 2 दिवसीय स्टेट लेवल बैंकर्स कंक्लेव का उद्घाटन करते समय कहा कि एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल होने के साथ साथ गोवा में कृषि क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं।
वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द गोवा नाउ ऑलरेडी जो फार्म एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं इनके लिए ड्रोन हम लेके आ रहे हैं उनके लिए इन फ्यूचर। पहले लोग बोलते थे कि अभी गोवा का एग्रीकल्चर कम होते जा रहे हैं, मैं तो डेफिनेटली कहूंगा कि इट इज डे बाय डे वी आर इंक्रीजिंग। under the Swayog, Honorable PM's vision of Atmanirbhar Bharat, Swayogpurna Goa concept, we are agriculture, horticulture, fishy culture, dairy culture. Is concept mein aaj मैक्सिमम वुमेन्स लीड लेके काम कर रहे हैं।
गोवा में सक्रिय स्वयं सहायता समूह विभिन्न प्रकार के उत्पाद और कृषि उपज तैयार कर रहे हैं। बैंकों को इन समूहों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की जरूरत है, उसी के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं से उन्हें लाभ मिल सकता है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी न्यूज, पणजी।
Tripura is all set to become a prominent destination for religious and spiritual tourism after Chief Minister Dr. Manik Shah laid the foundation, a stone and performed the Bhumi Pujan for the Grand 51 Shakti Peeth Park at Bandwar in the Gomti district. We have more from our Agartala correspondent.
Located just a few kilometers from the holy Mata Tripureshwari temple, one of the 51 Shakti Peethas, the religious park is set to become a landmark destination for pilgrims and tourists alike. Chief Minister Dr. Manik Saha expressed confidence that the project will significantly enhance spiritual tourism and boost the state's economy.
ये सभी लोगों के लिए एक ही जगह है, ये रिप्लिका देखेगा और उसको महसूस करेगा कि इतना सारा पीठ यहाँ पर अखंड पीठ पूरा देश और भारतों को महादेश में पड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल की भावना होगा और यहाँ पर खास करके पर्यटन विभाग से जिस तरह काम कर रहा है और मेरे ख्याल से मैंने देखा उनका वीडियो और वो देख के मुझे लगा है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयबिलिटी का जहाँ तक सवाल और त्रिपुरा का ऐसे भी आप जीडीपी आप देखिएगा तो नॉर्थ ईस्टर्न में सेकेंड हाईएस्ट है।
टूरिज्म मिनिस्टर सुशांत चौधरी सेट The park will house miniature replicas of all 51 Shakti Peethas, offering a one-stop spiritual experience, especially for devotees unable to travel across different countries like Bangladesh, Nepal, Sri Lanka or Pakistan, where some of the Shakti Peethas are located. Spread over 15 acres, the park will include a digital museum, amphitheater, sky bridge, vehicle parking and a towering statue of Nataraj, which will be one of the tallest in India. Kunal Shinde for Parikrama from Akashwani News, Agartala.
Fish farming in Jammu and Kashmir is progressing gradually to contribute significantly to the nation's vision of sustainable aquaculture and a thriving blue economy. The central government is at the forefront in transforming the fisheries sector in a holistic way and bringing about an economic growth and prosperity through the blue revolution in the country. J&K government is also putting in strenuous efforts to strengthen sustainable aquaculture. We have more from a Srinagar correspondent.
In Jammu and Kashmir, the fisheries sector is also on the upward path to compete to build up blue economy of Jammu and Kashmir. Talking to Parikrama Associate Professor and Head Division of Aquaculture Faculty of Fisheries at Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology, SCOST Kashmir, Dr. Inayatullah Chesti talked about scientific aspects and technical expertise being provided to the fish farmers.
जो हमारे फिशरीज के साथ जुड़े हैं उनको कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे ताकि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं उनके काम को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, आपको कैसे स्टार्ट करना है, आपको कैसे इसमें बेनिफिट मिलेगा, आप कोई भी प्रॉब्लम हो कैसे आप उनके ओवरकम आ सकते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ ये सही में सस्टेनेबल है। हम लोग हमेशा आपके लिए जुड़े रहेंगे, इसके लिए हमारे नंबर जो है 8803069034।
विद रिगार्ड टू वेरियस स्कीम्स दैट हेल्प एंड फैसिलिटेट अनएम्प्लॉयड यूथ टू अर्न लाइवलीहुड्स बाय एंटरिंग इनटू दिस vital employment generating sector, Director Department of Fisheries of Kashmir Abdul Majid Talk said,
हमारी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है अगर ये फिश कल्चर ये अडॉप्ट करते हैं तो उससे इनको अच्छा खासा आमदनी का जरिया बन जाएगा। ये फार्मर्स को सीड की कमी ना हो जाए उसको 50%।
Yes, and now for the return home for the XM Mission 4 crew, including pilot Subhanshu Shukla, and we now take you live to the event.
After that second set of hooks opens, we will then have those short thruster firings and have physical separation.
Yes, and the physical separation is taking place. The SpaceX Dragon capsule will be undocking from the International Space Station.
We are now about 4 minutes into that autonomous undocking sequence that began at 6:10 a.m. Central, 7:10 a.m. Eastern. We are standing by for physical separation here in just under a minute at 6:15 a.m. Central, 7:15 a.m. Eastern, once the final set of six hooks has fully retracted.
Yes, we will come back to you live for that event.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहाँ की हलचल। टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने कल रात लंदन में अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। रोमांचक फाइनल में उन्होंने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज को 4-6 से पहला सेट हारने के बाद 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। विंबलडन प्रतियोगिता के 148 साल के इतिहास में सिनर यह खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
Yes, and in cricket, chasing the target of 193 runs, India were 99 for 7 against England in the third match of the Anderson Tendulkar Trophy at Lord's a short while ago. They resumed the second innings at the overnight score of 58 for 4 today. Yesterday, host England were bowled out for 192 in the second innings. Both the teams scored 387 runs in the first innings. The five-match Anderson Tendulkar Test Series is currently level at 1-1.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
एंड न्यूज जस्ट कमिंग इन, द स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल हैज बीन सेपरेटेड एंड वेल मूविंग ऑन.
जी, अब हम बात करेंगे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
Today we remember social reformer and educationist Gopal Ganesh Agarkar. Gopal Ganesh Agarkar was born on the 14th of July 1856 in Karad Taluk of Satara district, Maharashtra. He first met Tilak at the Deccan College where they were classmates. The Tilak Agarkar duo set up a series of educational institutions to promote education and social reform and instill patriotism among the masses.
He was the first editor of Kesari, the leading Marathi newspaper founded by Lokmanya Tilak. Gopal Agarkar believed that the need for social reform was more immediate. Thus, he started his own periodical, Sudharak, in which he campaigned against the injustices of untouchability,
widow remarriage. The great social reformer continued to work till his last breath and died on the 17th of June, 1895.
Also on the 14th of July, 1942, Quit India Resolution was passed by the Congress Working Committee.
After the failure of the Cripps Mission, Gandhiji called for a voluntary British withdrawal from India. From 29th April to the 1st of May, 1942, the All India Congress Committee assembled in Allahabad to discuss the resolution of the Working Committee. Although Gandhiji was absent from the meeting, many of his points were admitted into the resolution, the most significant of them being commitment to non-violence.
On the 14th of July 1942, the Congress Working Committee met at Wardha and resolved that it would authorize Gandhiji to take charge of the non-violent mass movement. The resolution, generally referred to as the Quit India Resolution, was to be approved by the All India Congress Committee meeting in Bombay in August.
On 7th and 8th August 1942, the All India Congress Committee met in Bombay and ratified the Quit India Resolution when Gandhiji gave the mantra of do or die.
We also remember Martyr Gangaram. He was serving the English East India Company Army but left it during the First War of Independence in 1857 for taking part in the resistance against the British rule. He fought the British on several occasions and also offered financial assistance to his fellow rebels and encouraged them to attack British establishments.
Gangaram was caught by the company troops in one of their attacks on the rebel positions and put on trial for desertion, mutiny and aiding the rebellion against the British. He was sentenced to transportation for life with labour in irons in 1857 and sent from Bombay to the Andaman Islands, where he died in captivity on the 14th of July 1858. We salute the brave martyr.
And for the latest news, the SpaceX Dragon has been separated and it has undocked from the International Space Station, and it will take more than 22 hours for the space capsule to return to Earth with a splashdown at California coast around 3 p.m. Indian Standard Time. And for the return home, Axiom Mission 4, including our very own pilot Subhanshu Shukla, let's now take you live to the event.
To go at 6:15 a.m. Central, 7:15 a.m. Eastern. And we are standing by for the second in a series of four departure burns to take place in about 1 minute from now. And this will push the Dragon spacecraft and the Axiom Mission 4 crew beyond the keep-out sphere. That keep-out sphere is the invisible 200-meter line centered on the space station, and it is one of several safety zones set up to govern spacecraft arriving and departing from the space station. Before moving into the keep-out sphere, spacecraft have to be configured where they would not cross the imaginary boundary for at least all four orbits, even if the spacecraft lost all maneuvering.
Yes, and moving on, we have reached that section in our program wherein we remember all those greats who are associated with today's date. And today, veteran actor B. Saroja Devi, well known as Abhinaya Saraswati, passed away in Bangalore today at the age of 87. The iconic star, born on January 7, 1938, debuted as an actress in 1955 with Mahakavi Kalidas. Spanning over 7 decades, her career in the film industry saw her in over 200 films in Kannada, Tamil, Telugu and Hindi. She won the hearts of Kannada film lovers by playing the role of brave Rani Chennamma of Kittur, who fought the British. Saroja Devi was honored with the Padma Shri and Padma Bhushan for her valuable contributions to Indian cinema. And she was honored with a Lifetime Achievement Award in 2008 as part of the 60th Independence Day celebrations.
जी वही बी सरोजा देवी को तमिलनाडु सरकार के कल्यामणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, कर्नाटक के डॉक्टर राजकुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और आंध्र प्रदेश सरकार के एनटीआर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
Dhan Gopal Mukherjee passed on this day in 1936. He was the first successful Indian man of letters in the United States and won a Newbery Medal in 1928. He studied at Duff School, now known as Scottish Church Collegiate School, and at Duff College, both within the University of Calcutta in India, at the University of Tokyo in Japan, and at the University of California, Berkeley, and Stanford University in the U.S.
आज का दिन भारतीय संगीत प्रेमियों के लिए विशेष महत्व रखता है। यह वो तारीख है जब हम भारतीय सिनेमा के महानतम संगीतकारों में से एक मदन मोहन कोहली को याद करते हैं, जिनकी मधुर धुनें और भावपूर्ण रचनाएं आज भी हमारे दिलों में बसी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं मदन मोहन कोहली की। आज उनकी पुण्यतिथि है। मदन मोहन कोहली को गजल किंग या स्वर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंदी सिनेमा को ऐसी कालजयी गजलें और गीत दिए जो समय की सीमाओं से परे हैं। मदन मोहन की खासियत यह थी कि वे हर गीत को एक आत्मा प्रदान करते थे। उनके संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहरी समझ और पश्चिमी धुनों का अनूठा संगम देखने को मिलता था। उन्होंने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले जैसे महान गायकों के साथ काम किया और उनसे ऐसी प्रस्तुतियां निकलवाई जो आज भी बेमिसाल है। मदन मोहन केवल एक संगीतकार नहीं थे, बल्कि वे एक जादूगर थे जो अपने धुनों से दिलों को जीत लेते थे। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं और उनके संगीत की अमूल्य विरासत के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उनका संगीत भारतीय सिनेमा की धरोहर का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। Yes, and Leela Chitnis passed on this day in 2003. She was an Indian actress in the Indian film industry, active from the 1930s to 1980s. In early years, she starred as a romantic lead, but she is best remembered for her later roles, playing a virtuous and upright mother to leading stars. Ji, aaiye sunte hain Leela Chitni ki film Kangan se ye gaana.
Mahendranath Gupta was born on this day in 1854, also popularly known as Sri Mo and Master Mahashaya. He was a disciple of Ramakrishna and a mystic himself. He was the author of Sri Sri Ramakrishna Kathamitra, 5 volumes, a Bengali classic. In English, it is known as the Gospel of Sri Ramakrishna. He was also an early teacher to Paramhans Yogananda, a famous 20th century yogi, guru and philosopher. And also, Woodrow Wilson Guthrie was born on this day in 1912. He was an American singer, songwriter and composer, widely considered to be one of the most significant figures in American folk music. His work focused on themes of American socialism and anti-fascism and has inspired many generations both politically and musically with songs such as This Land Is Your Land and Tear the Fascists Down. Songwriters who have acknowledged Guthrie as major influence on the work include Bob Dylan. And in February 1940, Woodrow Wilson Guthrie wrote his most famous song, This Land Is Your Land. Let's listen to it.
This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me.
आज जन्मदिन है सुधा शिवपुरी की। टीवी और फिल्मों की दुनिया में बुजुर्ग महिलाओं के किरदार अक्सर सीमित और रूढ़िवादी होते थे। पहले बुजुर्ग किरदारों को ज्यादातर सिर्फ सपोर्टिंग रोल के लिए जाना जाता था और उनका अभिनय भी ज्यादा रंगीन या जीवंत नहीं होता था। लेकिन जब सुधा शिवपुरी ने टीवी की दुनिया में कदम रखा तो उन्होंने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। सुधा शिवपुरी ने बुजुर्ग महिला का रोल निभाते हुए उसे एक नया आयाम दिया। दिग्गज एक्ट्रेस की अदाकारी में ममता, समझदारी और टीवी जीवन के अनुभवों की जो झलक थी वह हर दर्शक के दिल को छू जाती थी।
Roshan Lal Nagart was born on this day 1917, known mononymously as Roshan. He was an Indian Esraj player and music director. Roshan became an accomplished sarod player under the guidance of Alauddin Khan, the renowned sarod player from Maihar. In 1940, Khwaja Khurshid Anwar, program producer music All India Radio Delhi, hired Roshan as a staff artist for Esraj, the instrument he used to play. He gave up his job in 1948 to seek fame and fortune in Bombay. Let's listen to him to a hit track of his.
दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा आज।
Yes, and Daniel Coulter Reynolds was born on this day in 1987. He's an American singer, songwriter and musician. He's a lead vocalist and a founding member of the pop rock band Imagine Dragons, which formed in 2008. He's a recipient of the Songwriters Hall of Fame, Hal David Starr Light Award. Let's listen in to his hit track, Bones. Yes, and Ernst Ingmar Bergman was born on this day in 1918. He was a Swedish film and theatre director and screenwriter, widely considered one of the greatest and most influential film directors of all time. His films have been described as profoundly personal meditations into the myriad struggles facing the psyche and the soul.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए नेहा गोस्वामी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने के।
नमस्कार, नमस्कार।